का था, रूह वही रूप नया।
रक्त मंडल के पिछले भाग में आपने सुना कि कैप्टन रूबी ने पकड़े हुए नौजवान से गोपाल शंकर द्वारा बनाए यंत्र से कई तरह के राज उगलवा लिए। ये एक ऐसा यंत्र था जो दिल की धड़कनों के जरिए सच और झूठ का पता लगाता था, मगर अब तक गोपाल शंकर और नगेंद्र नरसिंह का पता नहीं चल सका है। आगे क्या किया कैप्टन रूबी ने और क्या हुआ ब्रिटिश हुकूमत के साथ, सुनिए इस अगले भाग में। कैप्टन रूबी से बड़े लाट साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है, पंडित जी की मशीन के जरिए सारा बात इस कमबख्त के मुंह से निकालो और तुरंत यहाँ चले आओ। लॉर्ड गुशैन की मौत के बाद लॉर्ड केवर पाउट घबरा गया है, रक्त मंडल को जल्दी काबू में करना पड़ेगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। परसों की कमेटी में आपको उनकी बात पूरी ना हो पाई थी कि कैप्टन रूबी के कान में पिस्तौल छूटने की आवाज आई, वो चौंक पड़े। उसी समय धड़ाम धड़ाम करके और कई आवाजें सुनाई दी और ये भी मालूम हुआ कि ये आवाजें उनकी प्रयोगशाला की तरफ से आ रही हैं। घबरा कर उन्होंने टेलीफोन में कुछ कहा और रिसीवर को रख दिया। जेब से पिस्तौल निकालते हुए लेबोरेटरी की तरफ भागे, दरवाजे पर पहुंचकर फुर्ती से ताला खोला और अंदर घुसे। जो कुछ देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। देखा कि एक बेशकीमती मशीन एकदम चूर चूर हो गई है और उसके टुकड़े कमरे भर में इधर उधर पड़े हुए हैं। एक चीख बेतहाशा उनके मुंह से निकल गई, पर जब उन्होंने देखा कि कुर्सी पर कैदी की छाती में गोली लगी है जिससे उसकी मौत हो गई है और उस कुर्सी के नीचे खून टपक रहा है, तब तो उनका खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो एक कुर्सी पर गिर गए और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे। इसी समय फिर धड़ाम की आवाज आई। बाहर पेड़ पर के आदमी ने पुनः पिस्तौल छोड़ी और वो गोली कप्तान रूबी के बदन में घुस गई और वो चीख मार कर वहीं गिर गए। चारों तरफ दौड़ धूप मच गई। कई नौकर जाकर उस कमरे में पहुंचे जहां ये दुर्घटना हुई थी और कितने ही सिपाहियों ने उस पेड़ को घेर लिया जहां वो आदमी चढ़ा था, मगर वो आदमी अपने को घिरा हुआ पा जरा भी ना घबराया। उसकी पिस्तौल में एक गोली अभी बाकी थी और उसका भी मर जाना उतना ही जरूरी था। ये भी डर था कि अगर वो जीता रहा तो इन सभी की कैद में पड़ गया और शायद गोपाल शंकर की बनाई कोई अन्य मशीन उससे भी रक्त मंडल का भेद खींच लेगी। जल्दी जल्दी बहुत कुछ सोच पिस्तौल की नली उसने कनपट्टी से लगाई। उसके मुंह से निकला माँ जन्मभूमि विदा और तब उसने बंदूक दबा दी। धड़ाम की आवाज के साथ उसका निर्जीव शरीर उस पेड़ के नीचे आ गिरा। निकलते हुए सूरज को आड़ में कर ऊंचे पहाड़ों की नुकीली चोटियां इस तरह मालूम हो रही थी मानो उछले हुए गेंद को रोकने के लिए कई खिलाड़ियों ने हाथ ऊपर उठाए हों। नेपाल की राजधानी काठमांडू के दक्षिण कुछ दूर हटकर हरे भरे और सुहावने जंगल के किनारे बहने वाली एक छोटी सी पहाड़ी नदी के तट पर तीन खेमे लगे हुए थे। खेमे हालांकि बहुत बड़े नहीं थे पर छोटे भी नहीं थे और बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। खेमे के दरवाजे की चिकुठी हुई थी और उसकी राह भीतर की सुंदर पलगड़ी पर पड़ी। एक नाजुक और खूबसूरत औरत जो रेशमी लिहाफ ओढ़े कई तकियों के सहारे अधलेटी सी हसरत भरी निगाहों से सामने दरवाजे के दृश्य को देख रही थी। औरत की आकृति बता रही थी कि वो बहुत दिनों से बीमार है। बड़ी बड़ी आंखें जो कभी कमलों को नीचा दिखाती होंगी गड्ढों में धंस गई हैं। गाल जो किसी समय गुलाबों को मात करते होंगे पीले पड़ गए हैं। बदन की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है। कलाइयां सूखे पेड़ की टहनियों से हैं। चेहरा मुरझाया हुआ है। फिर भी जो कुछ बच गया है वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि किसी जमाने में ये औरत बहुत खूबसूरत रही होगी। न जाने किस गम के बोझ से दबे हुए उसके कलेजे से एक ठंडी सांस निकली और उसने अपना सिर रजाई में छिपा कर सांसें लेना शुरू किया। इसके साथ ही उसकी आंखें डबडबा आईं और कई बूंद आंसू निकल कर मुरझाए गालों पर ढुलक गए। इसी समय एक नौजवान उस खेमे के दरवाजे पर आ पहुंचा और भीतर झांक कर बोला, कामिनी जाग गई? हाँ भैया, कहकर उस औरत ने छिपे तरीके से आंखें पोंछ ली और मुंह पर से रजाई हटा उस नौजवान को देखा। आओ। नौजवान भीतर आया और पलंग की पाटी पर बैठता हुआ बोला, कैसी तबीयत है बहन?
अच्छी है।
सुबह का समय कितना सुहावना है, कहीं टहलने चलोगी?
नहीं भैया, मेरा मन नहीं करता।
मगर उस नौजवान ने एक न सुनी और जिद करके उस औरत को साथ चलने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा,
अरे
पढ़े पढ़े तो तुमने अपना शरीर खराब कर लिया है, न जाने कौन सी फिक्र सता रही है कि एकदम घुली जा रही हो। ऐसी सुहावनी जगह आकर भी जरा घूमो फिरोगी नहीं तो कैसे बनेगा।
चलो उठो, दुशाला ओढ़ लो,
चलो जरा दूर घूमावे, मन बहल जाएगा। आखिर उसकी जिद से लाचार हो औरत को उठना पड़ा। नौजवान ने कीमती दुशाले से उसके बदन को अच्छी तरह ढांक दिया और तब हाथ पकड़े सहारा देकर बाहर ले आया। इसके बाद दोनों आदमी धीरे धीरे टहलते हुए पहाड़ी नाले के आसपास घूमने लगे। ये औरत तो कामिनी देवी है और नौजवान भाई नरेंद्र सिंह। अपनी बहन की तबीयत किसी तरह न संभलती देख ये उसे शहर से बाहर एक रमणीक स्थान पर ले आया था और आशा करता था कि यहाँ की साफ हवा, रमणीक दृश्य और साथ ही साथ कुछ चहलकदमी शायद उसे फायदा पहुंचाए। सुंदर और मनोहर दृश्य देखते, नाजुक चिड़ियों की मनोहर बोलियां सुनते और सुबह की खुशबू से लदी फुर्ती पैदा करने वाली ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कामिनी और नरेंद्र सिंह धीरे धीरे टहलते हुए खेमों से कुछ दूर निकल आए। मन को लुभाने वाली प्रकृति की छटा ने बीमार कामिनी के मन पर भी आखिर असर किया ही और वो कुछ देर के लिए अपनी बीमारी को भूलकर प्रसन्नता और आनंद के साथ इधर उधर देखती और अपने भाई से बातें कर नाले के किनारे किनारे जाने लगी। रास्ते के पहाड़ी गुलबूटों में से जो उसका ध्यान आकर्षित करते उन्हें वो तोड़कर सूंघती, जूड़े में खोंसती या हाथ में गुच्छे की तरह इकट्ठा करती जाती। और नरेंद्र भी ये देख कर कि इससे इसका मन बहलता है इधर उधर चट्टानों की आड़ या कुछ बेमौके जगहों पर लगे सुंदर फूलों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करवाता और उसकी इच्छा जान उन्हें ला देता और प्रसन्न चित्त से तरह तरह की बातें करता। पहाड़ी का अंत आ गया और अपने सामने नीचे की तरफ कोसों तक फैले हुए मैदान की ओर कामिनी का ध्यान गया। वहां के आसमान के ऊपर मंडराती हुई किसी काली चीज ने उसकी आंखें आकर्षित की। उसने गौर से देखा, तब अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली,
भैया देखो तो वो काली काली चीज क्या है।
नरेंद्र उस वक्त एक गड्ढे में झुका हुआ नीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल तोड़ने में व्यस्त था। कामिनी के कहने पर उसने सिर घुमाया और सरसरी तौर पर देखकर बोला,
कोई चील या गिद्ध होगा।
और तब फिर अपने काम में लग गया। मगर जब कामिनी ने कुछ तुनक मिजाजी से कहा,
अच्छा ठीक तरह से देखा भी नहीं, गिद्ध नहीं है, तुम्हारा सिर है हा?
तो वो सीधा खड़ा होकर गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो बोला,
ये तो कोई गुब्बारा सा मालूम पड़ता है।
उसके कंधे पर एक दूरबीन लटक रही थी जिसे उसने दूर का दृश्य देखने के लिए साथ में ले लिया था। उसने दूरबीन निकालकर आंख से लगाई और कुछ देर तक खूब गौर से देखने के बाद बोला,
वो गुब्बारा है और उसकी रस्सियों के साथ एक झूला सा बना हुआ है जिसमें एक आदमी लटक रहा है।
कौतूहल से कामिनी ने दूरबीन उसके हाथ से ले ली और अपनी आंखों पर लगाकर देखने लगी।
सचमुच ही वो एक छोटा सा गुब्बारा था
जो सुबह की मंद मंद वायु के हल्के थपेड़ों के कारण पेंगे लेता हुआ इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उसके नीचे की ओर रस्सियों से लटकते हुए आदमी की तरफ भी कामिनी का ध्यान गया और वो कुछ देर तक गौर से उसे देखने के बाद नरेंद्र सिंह से बोली,
भैया उस आदमी पर तुमने गौर किया जो उसके नीचे लटक रहा है? बिल्कुल हिलता डुलता ही नहीं, क्या मुर्दा तो नहीं है?
अरे नहीं नहीं, मुर्दा क्यों होगा, कहकर नरेंद्र ने दूरबीन कामिनी के हाथ से ले ली और गौर से देर तक देखता रहा। मगर कामिनी की तरह अंत में उसे भी यही निश्चय करना पड़ा कि वो आदमी या तो मुर्दा है या फिर बेहोश है, क्योंकि एक तो उसके बदन में हरकत बिल्कुल न थी, दूसरे उसका सिर बगल में इस तरह लटका हुआ था मानो उसके गर्दन में इतना जोर ही ना रह गया हो कि सर को संभाल सके, तीसरे उसका बदन भी उस झूले की तरह बेतरह आगे को लटका हुआ था। नरेंद्र ताज्जुब के साथ देर तक उसकी हालत पर गौर करता रहा। जो कुछ उसने देखा वो कामिनी को भी बताया और इसके बाद दोनों ही लोग उसी जगह एक चट्टान पर बैठकर गौर से ताज्जुब और उत्कंठा के साथ इस गुब्बारे को देखने लगे जिसे हवा सीधा उन्हीं की तरफ ला रही थी और जो पल पल में नजदीक आता हुआ अब निगाहों के पहले सा मालूम पड़ता था। धीरे धीरे वो गुब्बारा उनसे कोस भर के कम फासले पर रह गया। अब नरेंद्र की तेज दूरबीन उस गुब्बारे और उसके साथ लटकने वाले आदमी के बदन के एक एक हिस्से को साफ साफ देखने लगी थी। बहुत देर तक गौर के साथ देखने पर भी उस आदमी के बदन में किसी तरह की हरकत ना पाकर ये तो दोनों ने ही निश्चय कर लिया कि ये आदमी या तो बेहोश है और या फिर मर गया है। मगर ज्यों ज्यों वो आदमी पास आता जाता था, त्यों त्यों उस आदमी की पोशाक आदि भी स्पष्ट होती जाती और चेहरे का भी कुछ हिस्सा साफ दिखने लगा था। पोशाक बता रही थी कि वो कोई फौजी अफसर है और चेहरे का कुछ अंश दिख रहा था। वो कह रहा था कि ये नौजवान है और खूबसूरत है। सूर्य की किरणें उस गुब्बारे पर आकर पड़ी जिससे वो एकदम चमक उठा और साथ ही ऊपर की तरफ भी उठा। ऊपर उठते ही तेज हवा पाकर उसकी चाल कुछ और तेज हो गई, मगर रुख जरा पलट गया। अर्थात जहां वो सीधा इन दोनों की तरफ आ रहा था, अब इनके कुछ दाहिनी तरफ झुकने लगा। नरेंद्र सिंह जो गौर से इन बातों को देख रहा था, आप ही आप बोला, रात की ठंड में गुब्बारे की गैस सिकुड़ी हुई है, इससे वो नीचे नीचे उड़ रहा है। अब धूप पाकर गर्म होने से गैस कुछ फैलने लगी है, इससे गुब्बारा भी ऊपर उठ रहा है। कामिनी ने यह सुनकर कहा, मगर इसका रुख क्यों पलट गया? पहले तो सीधा हम ही लोगों की तरफ आ रहा था, अब दूसरी तरफ जाने लगा। नरेंद्र बोला, ऊपर की हवा का रुख होगा। अरे मगर ये क्या, ये तो नगेंद्र नरसिंह है। हवा के एक झोंके ने गुब्बारे को घुमा दिया जिससे लटकने वाले का चेहरा उनके सामने आ गया। साथ ही सूर्य की किरणों ने उस पर पड़ उसके हर एक रग रेशे को साफ कर दिया जिससे उस आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा। नरेंद्र ने फिर गौर से दूरबीन के जरिए उसकी तरफ देखा और तब कहा, अगर नगेंद्र नहीं है तो जरूर उसी से मिलती जुलती सूरत शक्ल का कोई नौजवान है। गुब्बारा बिन लोगों के और भी करीब आ गया और क्षण क्षण में ऊंचा होता और दाहिने खिसकते जाता था। नरेंद्र की बात सुन कामिनी ने दूरबीन हाथ से ले ली और बहुत गौर से उस आदमी की सूरत देखी। न जाने उसे क्या दिखाई दिया कि वो एकदम चौंक पड़ी और दूरबीन उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो दोनों हाथों से अपना कलेजा थाम लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नरेंद्र की आंखें उस गुब्बारे की तरफ लगी हुई थी, मगर यकायक उसका ध्यान उसकी तरफ गया और वो एकदम चौंक कर दोनों हाथों से अपना बाहिना कंधा पकड़कर सहारा देता हुआ घबरा कर बोला, कामिनी कामिनी क्यों क्या हुआ क्या हुआ? कामिनी ने आंखें खोली और एक बार अपने चारों तरफ देखा, तब बोली, कुछ नहीं, यूं ही सारा चक्कर आ गया था। नरेंद्र ने उसे संभालते हुए कहा, मेरी जांग पर सिर रखकर जरा देर के लिए लेट जाओ, मालूम होता है कमजोरी से चक्कर आने लगा है। मगर कामिनी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और दूरबीन उठाकर उसके हाथ में देती हुई बोली, देखो गौर से, सचमुच ही तुम्हारे दोस्त नगेंद्र नरसिंह ही है क्या? गुब्बारा बिन के सिर से लगभग 100 गज की ऊंचाई और चौथाई मील के फासले पर उड़ता हुआ उत्तर पश्चिम के कोण की तरफ जा रहा था। उस बेहोश की सूरत वो तेज दूरबीन अब खूब साफ साफ देख रही थी। नगेंद्र ने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, बेशक, मालूम होता है कि नगेंद्र ही है, तब क्या करना चाहिए? कामिनी ने दूरबीन उसके हाथ से ले ली और कहते हुए आंखों से लगाई, जैसे भी हो उन्हें गुब्बारे से तो उतारना ही चाहिए ना। दूरबीन के सहारे उस लटकते हुए नौजवान की सूरत उसने पुनः गौर से देखी और फिर एक लंबी सांस के साथ अपने कलेजे को दबाया, दूरबीन हाथ से रख दी और नरेंद्र की तरफ आग्रह से बोली, भैया क्या तुम अपने दोस्त की कोई मदद ना करोगे? नरेंद्र कुछ सोचता हुआ बोला, मगर करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। गुब्बारा जमीन पर उतारने के लिए उसकी गैस निकालनी पड़ेगी, इस काम के लिए एक छेद गुब्बारे में बना होता है, मगर उसको खोलना ना खोलना गुब्बारे वाले आदमी के हाथ में होता है और इस समय या तो वो बेहोश है या मर गया है। ज्यों ज्यों सूरज की गर्मी बढ़ रही है, गुब्बारे की गैस फैलती उसे ऊंचा करती जा रही है, तो अब मैं क्या करूं? यकायक नरेंद्र को कुछ ख्याल आया। उसने पीठ से लटकती हुई राइफल, जिसको उसने जंगली और पहाड़ी जगह में हरदम साथ रखना जरूरी समझा था, उतारी और गुब्बारे की तरफ सीधी की। कामिनी चौंक कर बोली,
है? अरे अरे क्या करते हो, उन्हें गोली मारोगे?
नहीं, नगेंद्र को नहीं, उसके गुब्बारे को गोली मारूंगा।
कामिनी बेचैनी से बोली, और कहीं अगर उन्हें गोली लग गई तो?
जिस पर नरेंद्र ने कहा, अगर ऐसा होगा ना तो मैं बंदूक चलाना छोड़ दूंगा। इसके साथ ही धाएं की आवाज हुई और राइफल की गोली सनसनाती हुई गुब्बारे की चोटी से दो अंगुल के फासले पर लगी। नरेंद्र ने दूसरी बार फायर किया और इस बार गुब्बारे की चोटी को छूती हुई गोली गई। बहुत ही जरा सी चरका गोली लगी, लेकिन करीब उंगली जाने लायक एक लंबा सा छेद हो गया। नरेंद्र ने खुश होकर कहा,
ये वो मारा।
अब गैस धीरे धीरे निकलनी शुरू होगी और गुब्बारा जमीन पर आ जाएगा। इतना कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा चलो कामिनी, मैं तुम्हें खेमे में पहुंचा दूं और वहीं से घोड़ा ले गुब्बारे का पीछा करूंगा, न जाने कितनी दूर जाकर वो गिरेगा। कामिनी इस समय दूरबीन आंखों से लगाए उस गुब्बारे की चाल देख रही थी। नरेंद्र की बात सुन वो सिर हिलाकर बोली, मैं यही हूँ, मैं देखती रहूंगी गुब्बारा किधर जाता है। मुमकिन है तुम्हारे लौटते लौटते तक किसी ऐसी जगह जा गिरे जहां से खोजना मुश्किल हो।
नरेंद्र ये सुनकर बोला,
हाँ तुम कहती तो ठीक हो। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं अभी आया, ये राइफल छोड़े जाता हूँ, मगर जरा चौकन्नी रहना, जंगल का वास्ता ठहरा, मैं अभी आया। वो दौड़ता हुआ पीछे को भागा और जाते जाते कामिनी के शब्द उसके कानों में पड़े,
अपने साथ दो घोड़े लेकर आना।
उसने पूछा,
काहे को?
मगर मोहलत न थी। ये समझकर चित्त को संतोष दिया कि शायद बेहोश नगेंद्र को लाने के लिए दूसरा घोड़ा कहा होगा, वो तब सरपट लश्कर की तरफ दौड़ा। कामिनी एकटक उस गुब्बारे को देख रही थी जिसका फासला अब बढ़ता जा रहा था। कामिनी ने अपनी चोली में हाथ डाला और वहां छिपी हुई कोई चीज निकाली, एक निगाह उस चीज पर डाली और तब दूसरी उस गुब्बारे वाले आदमी पर। इसके बाद एक लंबी सांस लेकर उस चीज को छाती से चिपकाते हुए कहा, मेरी आंखें चाहे ठीक बतावे ना बतावे, मगर मेरे प्यारे दिल ने बता दिया है कि तुम वही हो जो इस तस्वीर के रूप में बरसों से मेरे दिल के अंदर हो। भगवान, क्या सचमुच आज तू मेरी मुराद पूरी करने वाला है? पर साथ ही उसके मन में निराशा हुई, अगर वे तो बेहोश हैं या शायद मुर्दा हैं। उसके चेहरे पर कालिमा दौड़ गई, अगर बीमार होंगे तो मैं अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाऊंगी, अगर मरे होंगे तो मैं तुम्हारी लाश के साथ जलकर बैकुंठ में जाकर तुमसे मिलूंगी। उसने एक लंबी सांस के साथ वो चीज जो वास्तव में एक फोटो थी होठों से चूम ली और तब अपने ठिकाने रख दूरबीन की सहायता से पुनः उस गुब्बारे को देखने लगी। दो नौजवान अंग्रेज तेज घोड़ों पर चढ़े सरपट उस पहाड़ी मैदान में चले जा रहे थे जिसे तीन तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने घेरा हुआ था। दोनों की पोशाकें बता रही थीं कि फौजी जवान और साथ में एक अफसर भी है, तथा उनकी पेटी से लटकती हुई बंदूकें और हाथ की दूरबीनें ये भी संदेह पैदा कर रही थीं कि वे कदाचित किसी का शिकार कर रहे हैं। मगर नहीं, हमारा संदेह गलत है। एक जगह पहुंचकर जब दोनों ने यकायक घोड़ों की चाल कम की और आसमान की तरफ अपनी दूरबीनें उठाई तो पता लगा कि उनका लक्ष्य जमीन का कोई शिकार नहीं, बल्कि हवा का एक ऐसा शिकार है जिसका ठीक पता अभी उन्हें नहीं लगा है, क्योंकि वे लोग आसमान में चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ा रहे थे और दूरबीन से आकाश का एक एक कोना टटोल रहे थे। यकायक एक सवार ने अपना हाथ सामने की तरफ उठाया और खुशी भरी आवाज में कहा,
वही है, वही है।
इसके साथ ही दूसरे ने भी कहा,
हाँ ठीक, मैंने भी देखा, वो बादल के टुकड़े के नीचे ना।
जिसके जवाब में पहले ने कहा, हाँ हाँ वही, मगर अभी तो बहुत दूर है।
अरे कोई हर्ज नहीं, हवा बहुत तेज नहीं है, शायद हम लोग अभी उसे पा सकते हैं।
इतना कहकर दूरबीनें ठिकाने पर रखने के बाद उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और पुनः सरपट जाने लगे। आधे घंटे तक सरपट जाने के बाद इनके और उस गुब्बारे के बीच के फासले में कमी हो गई, क्योंकि हवा बहुत ही मंद मंद थी जिसके कारण गुब्बारे की चाल तेज नहीं थी, पर इनके घोड़े बहुत ही तेज और ताकतवर थे। इसी बीच में सूर्यदेव भी निकल आए और उनकी पहली किरण उस गुब्बारे पर पड़ी, मगर इन सवारों की चाल कुछ कम होने लगी क्योंकि मैदान का हिस्सा खत्म होकर पहाड़ी सिलसिला जारी हो गया था, जिससे रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढोंके और पहाड़ी के टुकड़े इनके घोड़ों की राह रोकने लगे थे। हालांकि अभी भी दो चार कोस आगे जाने लायक रास्ता था, मगर इसके बाद पहाड़ों की बीहड़ दीवार शुरू हो गई थी जिस पर घोड़े किसी तरह चढ़ नहीं सकते थे। इसके साथ ही सूर्योदय के संग हवा की तेजी कुछ बढ़ने लगी और वो गुब्बारा भी ऊपर की तरफ उठता सा जान पड़ा। इनके घोड़े भी कोसों से सरपट जाते जाते थक गए थे, जिसे देख आगे जाने वाले सवार ने अपनी चाल कुछ कम की और साथी से कहा, अगर गुब्बारा पहाड़ों पर चला गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरे ने कहा, यही तो मैं भी देख रहा हूं। अरे गुब्बारे की चाल तेज होती जा रही है, मालूम होता है ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब तक मैदान में रहने के कारण हम लोग पीछा तो करते चले आए, किंतु पहाड़ों के बीच तो जाना मुश्किल होगा। अगले सवार ने अपना घोड़ा रोक दिया और दूरबीन से पुनः उस गुब्बारे को गौर से देखना शुरू किया, जो उससे लगभग 2 या 3 मील आगे था और करीब 500 गज की ऊंचाई पर था। कुछ देर तक गौर से उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने अपने साथी से कहा, मैं समझता हूं कि अब उसका हाथ आना कठिन है, फिर भी मैं पीछा करता हूं। तुम वापस चले जाओ और बड़े साहब को जाकर खबर करो कि हम लोगों ने गुब्बारे पर एक आदमी उड़ता देखा है जो दक्षिण की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये रक्तमंडल का वही आदमी हो जिसकी खबर आई है। अच्छा उनसे ये भी कह देना कि वो नेपाल के पहाड़ों में कहीं गिरेगा और बिना नेपाल सरकार की आज्ञा के हम उसे पा नहीं सकते। वो नेपाल सरकार को इसकी खबर कर दें या फिर जो भी कोई मुनासिब कार्रवाई हो उसका इंतजाम करें। 2-4 मिनट तक आपस में कुछ बातें होती रहीं और तब एक सवार पीछे को लौटा और दूसरा पुनः आगे बढ़ा। इस बीच में गुब्बारा बहुत आगे निकल गया था, फिर भी सवार ने हिम्मत नहीं हारी और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर होशियारी के साथ चलता हुआ अपने भरसक तेजी के साथ गुब्बारे का पीछा करने लगा। यकायक सवार के कानों में बंदूक छूटने की आवाज आई। उसके शिक्षा प्राप्त कानों ने यह भी बता दिया कि यह राइफल की आवाज है और उससे लगभग मील भर दूर से आई है। उसने चौंक कर अपनी दूरबीन आंखों से लगाई और उसी समय उसकी निगाह अपने सामने कोई 300-400 गज की एक छोटी सी पहाड़ी पर गई। तेज दूरबीन ने पहाड़ी के सिरे पर बैठे एक औरत और एक मर्द को साफ साफ देख लिया। औरत के हाथ में दूरबीन थी और मर्द के हाथ में राइफल, जिसके मुंह से निकला हुआ धुआं अब ऊपर की ओर लोप हो रहा था। बंदूक की सीध पर गौर करके उस सवार ने यह भी समझ लिया कि उसका लक्ष्य गुब्बारा है। गुस्से के साथ सवार ने कहा, बेवकूफ आदमी, सरकारी कैदी पर गोली चलाता है। मगर इसके साथ ही दूसरी गोली छूटी और वो गुब्बारा यकायक कई गज नीचे उतर पड़ा। अब इस सवार को समझ में यह आ गया कि उस बंदूक चलाने वाले का मतलब कुछ और था। वो खुश होकर बोला, उसने गुब्बारे में छेद कर दिया, अब तो वो जमीन पर ही गिरेगा और मैं उस सवार को अब पकड़ लूंगा। उसने अपने घोड़े की चाल तेज की और गुब्बारे की तरफ बढ़ा, मगर साथ ही साथ उसके मन में ये ख्याल भी चक्कर मारने लगा, आखिर ये लोग कौन हैं और गुब्बारे को गिराने का इनका क्या अभिप्राय है। गुब्बारे की गैस तेजी से निकल रही थी और वो क्षण क्षण नीचे होता जा रहा था, जिससे सवार की हिम्मत बढ़ती जा रही थी और वो घोड़े को डपटता आगे बढ़ता जाता था। नीचे उतरने के साथ साथ हवा कम लगने से गुब्बारे की चाल में भी फर्क आ रहा था और अब ये सवार सहज ही अपने और उस गुब्बारे के बीच के फासले को कायम नहीं रख सकता था, बल्कि उसे कम भी कर सकता था। फिर भी इसमें शक नहीं कि अभी काफी दूर जाने के बाद वो गुब्बारा जमीन पर आएगा। लगभग कोस भर जाते जाते इस सवार और उस गुब्बारे का फासला काफी कम हो गया, उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई और उम्मीद पाई जाने लगी कि कोस भर जाते जाते ये जमीन पर आ जाएगा। मगर अब इस सवार को रास्ता तय करने में बेहद तकलीफ होने लगी, क्योंकि मैदानियत का अंत होकर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया था और बड़े बड़े बीहड़ ढोंकों ने रास्ते को बेतरह रोकना शुरू कर दिया था। फिर भी वो सवार बड़ा होशियार और उसका घोड़ा खूब मजबूत था, जो रास्ते की कठिनाइयों पर कुछ भी ध्यान न देता हुआ भरसक तेजी से साथ बढ़ता जाता था। यकायक सवार के कानों में कुछ आवाजें आईं और साथ ही उसने देखा कि गुब्बारे का ऊपरी हिस्सा शायद गैस निकलने की तेजी से फट गया है, जिसके साथ उसकी मोटाई तेजी से पिचक गई है और वो जोर लगाकर नीचे आ रहा है। सवार ये देखकर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और गौर से देखने लगा कि गुब्बारा आखिर गिरता कहाँ है। उसने देखा कि तेजी से नीचे आता हुआ वो गुब्बारा एक ऊंचे और बहुत बड़े पेड़ पर जाकर गिरा और उसकी डालियों को तोड़ता और शाखों से उलझता हुआ कुछ नीचे की ओर रुक गया। सवार ने यह देख प्रसन्न हो घोड़े को आगे बढ़ाया और संभालता हुआ पहाड़ी के ऊपर की तरफ चला, क्योंकि वो पेड़ जिस पर वो गुब्बारा आकर गिरा था
सामने की पहाड़ी की लगभग आधी ऊंचाई पर चढ़कर था और वो पहाड़ी इतनी उबड़ खाबड़ और ढोकों से भरी थी कि उस पर घोड़े पर सवार होकर चढ़ना ही काम रखता था। अभी मुश्किल से सवार ने अपने और उस गुब्बारे के बीच का आधा रास्ता तय किया होगा कि उसके कानों में कुछ लोगों के बोलने की आवाज आई। दो घुड़सवार उसे दिखाई पड़े जिनमें से एक मर्द और दूसरी औरत थी। सवार को थोड़ा भी संदेह न रह गया कि ये वे दोनों वही औरत और मर्द हैं जिन्होंने इस गुब्बारे पर गोली मारकर इसे गिराया था। साथ ही वो ये भी सोचने लगा, इन दोनों से मुझे इस गुब्बारे वाले के गिरफ्तारी में मदद मिलेगी या बाधा। कामिनी देवी ने वो तस्वीर पुनः अपनी जगह छिपा दी और दूरबीन उठाकर बेहोश आदमी और उस गुब्बारे को देखती हुई इस बात पर दिमाग दौड़ाने लगी कि देखे वो गुब्बारा जाकर गिरता कहाँ है। एकाएक उसकी निगाह नीचे के मैदान पर चली गई जहाँ एक सवार को तेजी के साथ सरपट घोड़ा दौड़ाते उसने देखा और वो चौंक पड़ी। उसने अपनी दूरबीन उसकी तरफ घुमाई और देखा कि वो एक फौजी है जिसकी पोशाक से वो कोई अफसर होता मालूम पड़ता है। उसके मन में एक बिजली सी बात दौड़ गई, कहीं नगेंद्र नरसिंह को गिरफ्तार करने के लिए तो नहीं आ रहा ये सवार। कई दफे नगेंद्र नरसिंह का नाम सुन चुकी थी और इस बात से आभास पा चुकी थी कि नेपाल के पड़ोसी देश भारत के खिलाफ कोई भयानक साजिश कर रहे हैं। वो बहुत दफे नरेंद्र के मुंह से उनकी हिम्मत और बहादुरी के कारनामे सुन चुकी थी और हालांकि आज के पहले तक ये नहीं जानती थी कि वो नगेंद्र जिसकी तारीफ करते हुए उसका भाई अघाता नहीं, ये वही तस्वीर वाला नौजवान है जिसने उसका दिल चुराया है। फिर भी वो इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर नगेंद्र नरसिंह एक बार अंग्रेजी सरकार के हाथ में पड़ गए तो फिर उनकी जान की खैर नहीं। इस कारण वो बहुत गौर से उस सवार की गतिविधि को देखने लगी। उसका दिल उछलने लगा और वो चिंता में पड़ गई कि देखें वो सवार करता क्या है। उसी समय नरेंद्र दो घोड़े लिए, एक पर सवार और दूसरे की लगाम पकड़े वहां आ पहुंचा। घोड़े पर चढ़े ही चढ़े कामिनी से बोला, डेरे पर से मैं कई आदमियों की मदद के लिए उन्हें बुला चुका हूँ, तुम उनमें से एक के साथ खेमे चली जाओ और बाकी को मेरी तरफ भेजो, मैं नगेंद्र के पीछे जाता हूँ। पर कामिनी उसकी आवाज सुनते ही उठ खड़ी हुई और बंदूक को उसे देते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नरेंद्र ताज्जुब से बोला, हैं? तुम घोड़े पर मेरे साथ चलोगी? तुमसे चला तो जाता नहीं है या गिर गिरा कर हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? मगर कामिनी बोली, तुम घबराओ नहीं भैया, मुझे सिर्फ एक बार सहारा देकर बैठा दो, मैं गिरूंगी नहीं, इसका जिम्मा मेरा है। नरेंद्र ने पुनः कहा, नहीं नहीं जिद मत करो, जंगल पहाड़ का वास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, नदी नाला खोह दर्रा, डांकते कूदते गुब्बारे का पीछा करना पड़ेगा, तुम कहां आफत में पड़ने जाती हो। मगर कामिनी ने एक न सुनी और लाचार नरेंद्र को सहारा देकर उसे घोड़े पर चढ़ाना ही पड़ा। मगर जब कामिनी घोड़े पर जम कर बैठ गई और घोड़ा आगे बढ़ा तो उसके घोड़े के साथ वो भी होली। ये देख नरेंद्र को कुछ संतोष हुआ कि उसकी राने अभी भी मजबूत हैं और हाथ तेज से तेज और मुंहजोर घोड़े को भी बस में करने वाली पूरी होशियारी भूले नहीं है। नरेंद्र ने इसे क्षणिक उत्साह का कारण समझा, मगर फिर भी उसे कुछ संतोष इस बात का हुआ कि उसकी बहन किसी काम में तो दिलचस्पी लेने लगी। अबोध युवक, तू क्या जाने कि कामिनी को इस प्रकार अचानक फुर्तीला बनाने वाली शक्ति कौन सी है। दोनों जहां तक संभव हुआ तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे का रुख किए उस तरफ चल दिए जिस तरफ गुब्बारा जा रहा था। उस समय नरेंद्र सिंह की भी निगाह उस सवार पर पड़ी और उसने उसकी तरफ हाथ उठाकर कहा, वो क्या कोई सवार नीचे मैदान में जा रहा है? कामिनी ने कहा, हाँ मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी फौज का कोई अफसर है, बड़ी दूरी से पीछा कर रहा है। दोनों की निगाहें आपस में मिल गईं, जुबानों ने कुछ ना कहा परंतु दिल ने बात कर ली और एक दूसरे से कह दिया कि ये बहुत बुरी बला है जो मुश्किल से दूर होगी। इस विचार से कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर से जाने में कामिनी को कष्ट होगा, नरेंद्र अपने घोड़े को धीरे धीरे ले जा रहा था, परंतु कामिनी को ये सुस्ती नापसंद थी। उसका विचार था कि उस सवार से पहुंचने के पहले गुब्बारे पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए कुछ ही देर बाद उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और रास्ते की कठिनाइयों पर कुछ भी ध्यान न देते हुए तेजी से जाने लगी। नरेंद्र ने यह देखकर आवाज दी, अरे कामिनी होशियार, तेज जाने का रास्ता नहीं है। मगर उसने सिर्फ पीछे को हाथ कर साथ आने का इशारा दिया और घोड़ा आगे बढ़ चला।
लाचार नरेंद्र को भी अपने घोड़े को एड़ लगानी पड़ी, मगर उसने अपने दिल में कहा,
जरूर कामिनी की शामत आई है। ऐसी कमजोर हालत, ऐसा खतरनाक रास्ता और इतना तेज सफर।
मगर उसका डर व्यर्थ था। कामिनी के बदन में उस वक्त पुनः लाल खून तेजी मारने लगा था और उसकी कमजोरी और बेबसी न जाने कहां गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग गुब्बारे और उसके सवार के करीब पहुंचे। यकायक एक आवाज के साथ गुब्बारे का ऊपरी हिस्सा फट गया और वो तेजी से नीचे गिरा। कामिनी के मुंह से चीख निकली, मगर उसने अपने होठों को दांत से दबाकर जबरदस्ती उसे रोका और घोड़ा तेज किया। नरेंद्र भी अब आगे बढ़कर साथ हो लिया और दोनों घोड़े अपनी पूरी तेजी से चलने लगे। एक तरफ से वो सवार और दूसरी तरफ से ये दोनों एक साथ एक ही वक्त पर उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचे जहां वो गुब्बारा गिरा था। कामिनी और नरेंद्र की बेचैन निगाहें ऊपर को उठी। उन्हें गुमान था कि शायद नगेंद्र सिंह की कुचली टूटी लाश उन्हें देखने को मिलेगी, मगर नहीं। उस बड़े पेड़ की डालियों ने गुब्बारे की रस्सियों को उलझा कर उसे ऊपर ही रोक लिया था और नगेंद्र एकदम अधर में बेलाग लटकता बाल बाल बच गया। नरेंद्र के गले से संतोष की सांस निकली और वो घोड़े से कूदा। कामिनी भी नीचे उतरी और दोनों में सलाह होने लगी कि अब करना क्या चाहिए। अभी ये लोग कुछ निश्चय नहीं कर पाए थे कि वो फौजी जवान घूम कर इनके सामने आ गया और कुछ घमंड भरी आवाज में अकड़ता हुआ बोला,
शायद तुम लोग सोचते हो कि आदमी कौन है। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें बतला देना चाहता हूँ, ये खौफनाक बागी है जिसकी तलाश हमारी सरकार बहुत दिनों से कर रही है और जिसे मैं गिरफ्तार करने आया हूँ।
उस अफसर की बात का ढंग कुछ ऐसा था कि गर्म मिजाज नरेंद्र का दिमाग का पारा तुरंत चढ़ गया और उसने कड़े स्वर में कहा, अफसर, शायद तुम यही समझ रहे हो कि अभी तक भारत में हो, मगर जान लो कि तुम नेपाल राज्य की सीमा में हो और तुम्हारे सामने यहाँ की फौज का मातहत सिपह सालार मौजूद है। कहते हुए नरेंद्र ने अपनी फौजी पोशाक में लगे हुए एक रिबन की तरफ उंगली उठाई। नरेंद्र की बात सुन और खासकर उस रिबन को देखकर उस सवार का दिमाग कुछ ठंडा हुआ। थोड़ी कुर्खी के साथ उसने नरेंद्र को फौजी सलाम किया और तब ऐसे स्वर में, जिसमें से अकड़ अभी तक नहीं निकली थी, कहा, मैं ब्रिटिश फौज का कर्नल हूं, मेरा नाम है रमन, मैं इसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, मुझे मदद मिलनी चाहिए ताकि मैं इस बागी को लेकर वापस सरकार को दे सकूं। नरेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हारा पासपोर्ट। उस सवार का चेहरा उतर गया। वो अच्छी तरह जानता था कि इधर नेपाल सरकार का सख्त हुक्म हो गया है कि बिना पासपोर्ट लिए और हमेशा अपने साथ रखे हुए एक भी भारतीय, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नेपाल सीमा के अंदर पैर न रखे और ना कोई विदेशी बिना उसे साथ रखे कहीं आवे जावे। इसके लिए तिब्बत, भूटान, भारत और नेपाल की सरकारों में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई थी, मगर नेपाल सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। यही सोच उसका कुछ मुंह उतर गया और फिर वो ऐंठ कर बोला,
मैं रेजिडेंसी का अफसर हूं, मुझे पासपोर्ट की जरूरत नहीं और मेरे पास वो सब मौजूद नहीं है।
नरेंद्र ने तनकर कहा, अगर कोई और ऐसी बात कहता ना तो शायद ये समझकर कि उसे नियम नहीं पता, मैं उसे माफ कर देता, मगर तुम जब अपने को रेजिडेंसी का अफसर बताते हो तो तुम्हारा अपराध तो अक्षम्य हो जाता है।
मैं समझता हूं तुम झूठ बोल रहे हो।
जब तक इस मामले की पूरी जांच ना हो जाए तब तक के लिए तुम अपने को हिरासत में समझो। मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है, जाओ वहां पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और अपने हथियार मुझे दे दो, कहकर नरेंद्र सिंह ने अपना हाथ पुनः बढ़ाया। उस अफसर का चेहरा नरेंद्र की बात सुनकर लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुमको ये मजाल है कि एक अफसर के हथियार रखवा लो? कड़क कर नरेंद्र ने कहा, जरूर है। साथ ही उसने अपनी पिस्तौल कमर पेटी से निकाल उस अफसर पर निशाना साधकर कहा, तुमने नेपाल राज्य के सहायक सिपह सालार के हुक्म की बदसलूकी की है, खबरदार, अगर जरा भी जुम्बिश की तो गोली मार दूंगा। नरेंद्र के लहजे में इतनी ज्यादा कड़ाई थी कि उस अफसर का हाथ कमर तक जाता जाता रुक गया। अब वो इस बात को बखूबी जानता था कि इस समय रक्त मंडल की काली करतूतों के कारण नेपाल में भी बड़ी तनदेही है और पासपोर्ट साथ न रखकर केवल नियम भंग ही नहीं किया, बल्कि अगर नरेंद्र सचमुच नेपाल का माथा सिपसालार और भारतीय फौज का ऑनरेरी मेजर जनरल है तो उसका हुक्म न मानकर उसने फौजी कानून के खिलाफ काम किया है, जिसके लिए उसका कोर्ट मार्शल तक हो सकता है।
मगर एक नेपाली के हाथों रोका जाना उससे बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ। उसने कहा, तुम फजूल की बकवास बंद करो,
कहकर अपने कमर से लटकती हुई पिस्तौल पर हाथ डाला। शायद उसे ख्याल था कि एक नेपाली उसकी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। शायद उसने ये भी सोचा हो कि ये नेपाली इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि उस पर गोली चलाए। मगर अफसोस, वो अपनी बंदूक भी बाहर ना निकाल सका था कि नरेंद्र ने फायर कर दिया। ऐसा जान पड़ा मानो उसके हाथ में किसी ने जलता हुआ लोहा घुसेड़ दिया हो। मुंह से चीख निकली, मगर उसने हिम्मत के साथ उसे रोका और दूसरे हाथ से जख्मी हाथ को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। नरेंद्र ने फिर कड़क कर कहा, हुक्म उदूली का मजा पाया? और तब कामिनी से कहा, बहन आगे बढ़कर इसका हथियार छीन लो। कामिनी ने तुरंत वैसा ही किया। नरेंद्र ने उसे अपने घोड़े की पीठ पर फेंकते हुए कड़ी आवाज में कहा, जा और उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जा। उस अफसर ने वैसा ही किया। नरेंद्र की आंखों से इस वक्त खून टपक रहा था। उसने जोर से कहा, अगर नहीं मानता है तो अब की तरह पैर तोड़ दूंगा। अब उसको यह हिम्मत न रही कि नरेंद्र का हुक्म न माने। मन ही मन उससे कभी अच्छी तरह बदला लेने की बातें सोचता हुआ वो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। नरेंद्र ने अपनी पिस्तौल कमर में रखी और कामिनी ने कहा, भैया ये तुमने अच्छा नहीं किया। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? ये अंग्रेजी फौज के लिए काम करता है और तुमने इस पर गोली चला दी। अंग्रेज सरकार अपनी इज्जत का ख्याल करेगी और तुम्हारी सरकार पर इतना दबाव डालेगी कि तुम्हें ताज्जुब नहीं। नरेंद्र ने लापरवाही से कहा, मैंने जो कुछ किया अपने हक के भीतर किया और उसने मुनासिब सजा पाई है। फिर भी मैं ये अंतिम कार्यवाही न करता तो ये जानता है कि इस समय नगेंद्र को बचाने की और कोई दूसरी तरकीब न थी, और हमारे महाराज ने रक्तमंडल के मुकाबले में भारत सरकार की मदद करने की प्रतिज्ञा की है। अब तो ये हमारे हाथ में है। जब तक चाहेंगे 2-4-5 रोज तक भी ये बात किसी को मालूम ना होगी कि नगेंद्र को हम लोगों ने पाया है। मगर अब फिजूल में देर हो रही है, हमारे आदमी अभी तक क्यों नहीं आए? ओह वो देखो वो आ गए। थोड़ी ही देर में वहां कई आदमी आ पहुंचे। नरेंद्र ने अपनी मदद के लिए उन्हें बुलाया था। हट्टे कट्टे गठीले कई गोरखे नरेंद्र की आज्ञा पा उस पेड़ पर चढ़ गए और नगेंद्र सिंह को नीचे उतारने लगे। दो आदमी उसके हुक्म के मुताबिक उस अफसर को कैद किए हुए अपने खेमों की तरफ चल पड़े। नगेंद्र के मिलने के बाद क्या इस अफसर को नरेंद्र ने छोड़ दिया? क्या हुआ नगेंद्र और कामिनी के प्रेम संबंधों का हाल? और नगेंद्र को बचाने के लिए क्या किया नरेंद्र ने? सुनिए रक्तमंडल के अगले भाग में सिर्फ गाथा पर।